सर्वप्रथम हम कुछ पल ध्यान के अभ्यास से शुरुआत करते हैं। लाल लाइट कर देंगे, लाल प्रकाश श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित जो हमारा घर है, परम धाम, शांति धाम, जहाँ के हम रहवासी हैं, हमारे पिता परमात्मा भी और हम आत्माएं भी, जो ज्योति स्वरूप है, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रं ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। वो परम धाम शांति धाम की हम आत्माएं जो इस रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो हम सबको अपना श्रेष्ठ पार्ट अदा करना है। कभी कभी जीवन में निराशा उदासी की लहर, कार्मिक अकाउंट के कारण या हमारे वेस्ट नेगेटिव थॉट्स के कारण जरूर आती हैं, पर राजयोग मेडिटेशन का ये चमत्कार है कि हम धीरे धीरे नकारात्मकता से ऊपर उठते जाते हैं और विचारों की स्वच्छता हमारे जीवन में उतर जाती है। हम सब ने समझा परमात्मा परिचय में कि हम सब के पिता एक, जो ज्योति स्वरूप है, एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाकर देखो, हर धर्मों का सार एक है। एक वाहेगुरु, एक परमेश्वर, गॉड और अल्लाह एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। यही वो परम शक्ति परमात्मा जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो हमें सिखाते हैं। परमात्मा, आप प्यार के सागर हैं, तो मैं मास्टर प्रेम के सागर हूं। मुझे सभी को प्रेम बांटना है, इससे भी मेरी आंतरिक शक्ति का विकास होता है, जो जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। इस भाव के साथ तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण धार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण धार हो, एक तुम दाता दया लो सबके पालन हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणा धार हो, जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को अजब रचना कार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणा धार हो। मेरे दिल की गहराइयों में शिव बाबा की याद समाहित होती जा रही है और ये समर्पण भाव निश्चित रूप से मुझे जो जीवन की एक श्रेष्ठ ऊंचाई है जिसमें मन आनंदित होता है, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर होता है, उस गहराई में मैं स्वतः ही खोती जा रही हूं और इसी भाव के साथ आज के चिंतन को हम सुनेंगे। शांति शांति शांति, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। विगत 3 दिनों से आप मॉर्निंग के सत्र में किस प्रकार दैनिक जीवन में मेडिटेशन, पॉजिटिव थॉट की आवश्यकता है, इसके बारे में आपने सुना, आत्म परिचय प्राप्त किया और साथ साथ वो परम शक्ति परमात्मा कौन है, कल आप इस विषय की गहराई में गए। आज का विषय है राजयोग के चमत्कार। चाहते हैं जीवन में कुछ चमत्कार? आजकल लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, जहां चमत्कार दिखाई देते हैं ना वहां बहुत भीड़ रहते हैं और रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं, कि कोई फिजिकली प्रॉब्लम हुई या धन की शक्ति ऊपर नीचे हुई, पति पत्नी के संबंध बिगड़े, तलाक के केसेस चल रहे हैं, तो जिसका इमोशनल लेवल हाई है वो सोचता है कि कुछ ऐसी भभूत मिल जाए या कोई ऐसी अंगूठी मिल जाए जिसको पहन ले और सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ऐसा लगता है ना। और आजकल कलयुग के समय में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग जहां पर तुरंत रिजल्ट मिले, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, वहां बहुत भीड़ मच जाती है। ठीक, अब अगर मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कहूं तो मैंने खुद मेडिटेशन के, पॉजिटिव थॉट के बहुत से चमत्कार अपने जीवन में महसूस किया। चमत्कार क्या है कि अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आती भी है तब भी मैं स्वयं को संभाल सकूं, वो परिस्थिति मुझे विचलित न करें, और साथ साथ मैं योग में रह करके कर्म का आनंद लूं। कि आजकल लोग कर्म का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। ठीक, मुझे हर बात प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बताना अच्छा लगता है, जीवन के अनुभव। नहीं तो आपको लगेगा कि जो दीदियां यहां बैठ रही हैं उन्होंने सब कुछ ऐसे ही हासिल कर लिया, या उनको जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी। ऐसी बात नहीं है, संगठन में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको हैंडल किस तरीके से करते हैं। जैसे एक बार एक उदाहरण आता है कि एक खिलाड़ी था, उसने बहुत से प्राइज जीते। जब उसको प्राइज मिलता था तो बहुत तालियां बजती थी, लेकिन उसको एक बार ऐसी बीमारी हो गई कि वो अब खेल नहीं पाएगा। तो एक पत्रकार ने उससे पूछा कि क्या तुम भगवान को दोष नहीं देते हो कि आज इतना बड़ा मैं चैंपियन और आपने मुझे इतनी बड़ी बीमारी दे दी, तो आप भगवान को दोष नहीं देते। तो उस चैंपियन ने कहा कि जब मुझे मेडल मिलते थे, शील्ड मिलते थे, लोग तालियां बजाते थे, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि ये सब मेरी मेहनत का परिणाम है। उस समय मैं परमात्मा को धन्यवाद नहीं देता था, मुझे लगता था वो मेरी मेहनत है। तो अगर आज इतनी बड़ी बीमारी मुझे हो भी गई है तो मैं परमात्मा को दोष नहीं दूंगा, ये भी मेरे ही कर्मों का परिणाम होगा। तो आपने जब आत्मा का ज्ञान सुना तो ये महसूस हुआ होगा आपको कि शरीर बदल रहा है लेकिन आत्मा सदा है। लेकिन आत्मा भिन्न भिन्न शरीर के माध्यम से जो कर्म करती है, उस कर्म का परिणाम आत्मा को ही शरीर के माध्यम से ही फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसने शरीर के माध्यम से ही कर्म किया। तो एक बार एक भाई हमसे कह रहे थे कि दीदी, परमात्मा फिर ऐसा करे ना कि उस जन्म का उसी जन्म में दे दे, उस जन्म का उसी जन्म में दे दे तो इंसान गलत कर्म करे ही नहीं। बड़ा अच्छा प्रश्न था उसका। लेकिन मान लीजिए मेरी मुलाकात आप सभी से इस परिसर में हो रही है, लेकिन ये मिलना ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ने कहा कि हम भिन्न नाम रूप रंग में पहले भी मिले थे, अभी भी मिल रहे हैं, फिर मिलेंगे भिन्न वस्त्रों में, लेकिन आत्मा वही है। तो आत्मा भिन्न वस्त्रों में जब कार्मिक अकाउंट तय कर रही है अच्छे और बुरे, तो फेज भी तो हो सकता है कि कहीं और मुलाकात हो जाए और वो हमारा कार्मिक अकाउंट उस स्थान पर चुकत हो। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन में हमने रिजर्वेशन कराया। एक प्रैक्टिकल घटना बताती कि मैं बिलासपुर से बैठी, रिजर्वेशन था आबू तक आने का, तो एक व्यक्ति चढ़ा, उसने कहा कि दीदी मुझे ना बस रायपुर उतरना है, तो थोड़ा सा आपकी सीट में बैठ सकता हूँ? तो मैं क्या कहती, नहीं नहीं बैठो, कि बैठ जाओ कि नहीं बैठना, क्या कहना चाहिए था मुझे? रायपुर तक की तो बात है, 2 घंटे का सफर है, तो मैंने कहा बैठ जाइए। रायपुर में वो भाई उतर गए, फिर रायपुर में एक दूसरे भाई चढ़े, तो उन्होंने कहा दीदी वाइट ड्रेस वाले भी देखते ना, लगता है कि चलो प्रेम से तो बिठाएंगे और हम चाहते भी हैं सबका सम्मान करें। तो उन्होंने कहा दीदी बस मुझे ना राजनांदगांव तक जाना है, मैं 2 घंटे यहाँ आपकी सीट में बैठ सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है बैठ जाइए। प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, राजनांदगांव में वो उतर गए, फिर एक भाई चढ़े और फिर उन्होंने कहा कि दीदी बस नागपुर तक का सफर है, नागपुर तक बैठने देंगे? तब भी मैंने कहा चलो, और प्यार से कहा, लेकिन थोड़ी सी अब थकान हो रही थी कि कमर में दर्द हो रहा है, तो फिर भी मैंने कहा चलिए बैठ जाइए। नागपुर में वो उतर गए, फिर नागपुर में फिर एक भाई चढ़े कि 2 घंटे के बाद फिर अगले स्टॉपेज पे उतरने, तो मैंने बस प्यार से कहा कि मैं बिलासपुर से बैठी हुई हूँ, अब थोड़ा सा मैं भोजन के बाद रेस्ट लेना चाहूंगी, तो थोड़ा सा आप किसी अन्य स्थान पर बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, यही टोन थी मेरी। लेकिन उनका क्रोध शुरू हो गया कि इन्होंने तो पूरी ट्रेन खरीद ली है, रेलवे कोई खरीद लिया है, 2 ही घंटे तक का सफर था, हमें बैठने ही नहीं दे रहे हैं, पूरी ट्रेन की ट्रेन ब्रह्मा कुमारी दीदियों की है। अब उनका सुनना था मुझे, मैं कुछ बोल नहीं रहे थे, चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान थी, लेकिन उस बात को तो मुझे उनके आगे रखना जरूरी था। तो राजयोग का मिरेकल क्या था, चमत्कार क्या था, कि मैंने आवेग में नहीं कहा, क्रोध में नहीं कहा, लेकिन प्यार से अपनी बात रख दी। अब आपको लगेगा, या मुझे भी अगर मेरा इमोशनल लेवल बहुत हाई है तो मुझे लग सकता है कि अरे मैंने तो इनकी बद्दुआ ले ली, बद्दुआ ले ली, क्योंकि ये सबके सामने मुझे अब देखिए किस तरीके से कह रहे हैं। लेकिन फिर परमात्मा को याद किया कि कई बार जीवन में जो हमारे अधिकार होते हैं, आप सत्य हैं, तो सत्य को कहने का भी तरीका हमें आना चाहिए। लेकिन कहते ना बोलो मगर प्यार से। फिर मैं कभी कभी प्यार से इस बात को कहने लगी कि छोलो मगर प्यार से एक शब्द निकलते हैं, लेकिन उनके प्रति कोई दुर्भावनाएं तो नहीं रहती ना। तो ये मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग का चमत्कार तो होता है। कभी कभी हम सबको खुश करने के लिए हाँ हाँ कह देते हैं, लेकिन उसके बाद जो फेस करना पड़ता है वो हम जानते हैं। तो एक थॉट मेरे अंदर चला गया कि डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। क्योंकि कई बार फिर आप वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स के प्रोसेस में इतना चले जाएंगे कि आपकी शक्ति ही नष्ट हो जाएगी। तो जो राजयोग मेडिटेशन के चमत्कार हैं, उनको कुछ शक्तियों के माध्यम से हम लेंगे। जैसे देखिए, सूर्य के प्रकाश को हम लेंस में एकत्रित करते हैं, तो जब सूर्य की किरणें उस लेंस में कॉन्सेंट्रेट होती हैं, तो नीचे का कागज क्या होता है, जल जाता है। वैसे वो लेंस कहीं भी रखा था, लेकिन तब सूर्य की किरणें कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रही थी, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नीचे रखा तब नीचे का कागज जला, क्योंकि किरणें कॉन्सेंट्रेट हुई। उसी प्रकार मेडिटेशन का चमत्कार ये है कि जब हम परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है उनको याद करते हैं, तो उनकी किरणें आत्मा पर जब पड़ती हैं, तो चूंकि परमात्मा शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, शक्तियों के सागर हैं, तो जब वो किरणें कॉन्सेंट्रेट हो गई तो हमारे अंदर भी तो वो प्यार आएगा, सम्मान आएगा, खुशी आएगी, आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन अगर किसी आत्मा के साथ मेरे पूर्व जन्म के भी कुछ कार्मिक अकाउंट हैं, तो मैं आत्मा उसको खुशी खुशी फिर फेस कर पाऊंगे। कल का आपका वो विषय रहेगा। हालांकि कल आपसे मुलाकात थी, लेकिन देखिए कुछ पार्ट ड्रामा बनी बनाई बन रहे, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए, लेकिन आज आपके बीच में उपस्थित हो गई, तो उसको भी खुशी खुशी स्वीकार करना था, करना है। तो सबसे बड़ा चमत्कार मुझे खुश रहकर खुशी बांटनी है, और मेडिटेशन से सबसे पहली जो शक्ति एक जादू के रूप में मिराकल की बात हो रही है ना, वो है सहन शक्ति। कई बार देखिए हम सहन करते हैं, लेकिन सहन करते करते ना हमारी आंतरिक शक्ति जवाब दे जाती है। जैसे आपने बॉय फ्रॉक का उदाहरण सुना होगा कि मेंढक के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाह्य वातावरण के साथ एडजस्ट करता है। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है, मेंढक अपना टेम्परेचर एडजस्ट करता चला जाता है, लेकिन जब लास्ट डिग्री पे पानी पहुंच जाता है, तब मेंढक के अंदर ये ताकत नहीं होती कि वो पॉट में से कूद कर बाहर जा सके। उसी प्रकार हम लोग भी एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब एडजस्ट करते 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 एडजस्टमेंट की ताकत खत्म हो जाती है, तो हमें लगता है कि उससे अच्छा तो जीवन ही खत्म हो जाए तो ठीक है, क्या करेंगे इस शरीर को नष्ट करके, सुसाइड करके, आत्मा सदा है याद रखना। इस शरीर को आप नष्ट कर सकते हैं, आत्मा को तो नहीं कर सकते ना। तो क्यों ना मैं अपने लाइफ की चार्ज अपने हाथ में ले लूं, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, मैं दूसरे के हाथ में ना दूं, और स्वयं को मुझे कैसे चलाना है इस बात को मैंने अगर चुन लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरी आंतरिक शक्ति को मुझसे छीन सके। प्रातः काल की बेला है, 7:30 बज रहे हैं। थोड़ा थोड़ा दीदियां जब पॉजिटिव थॉट देती है ना तो लोरी लगती है किसी किसी को ना, और कोई कोई नींद में चला जाता है। हाँ, तो चलिए एक बार ना थोड़ी सी ताली बजा लेते हैं अपन। एक मिनट, जैसे मैं बोलूंगे है ना, एक हम उसमें चलेंगे ताल में। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। देख लीजिए बगल वाले को, सब अलर्ट, बिल्कुल चमत्कार अनुभव करना है जीवन का। तो सबसे पहली पावर जो हमारे अंदर आती है ध्यान के माध्यम से, वो है सहनशीलता। मैं सहन शक्ति नहीं कहूंगे, क्या कहेंगे? सहनशीलता। सहन तो करें लेकिन किसके साथ? शीतलता के साथ। सीनियर को जवाब नहीं दे सकते हैं, अंदर 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 प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। अगर आपको कोई फिल्म में केवल हीरो हीरोइन के प्रेम के गीत ही 3 घंटे तक दिखाई दें, आपको मजा आएगा क्या उस मूवी को देखने में? जब तक विलन की एंट्री नहीं होती ना, तब तक आनंद नहीं आता है। विलन होना चाहिए तो हीरो भी चाहिए और विलन की भी एंट्री चाहिए। केवल प्यार प्यार दिखाता रहे ना, उसमें मजा नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम कोई संकल्प करते ना कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं उदास नहीं होंगी, नहीं होऊंगा, मैं चिड़चिड़ाऊंगा नहीं, उसी दिन देखना कोई आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी जो आपके मुख से कुछ शब्द निकल जाएंगे। आप यहां सोच रहे होंगे, देखना यहां आए हैं ना, फिर अपने स्थान पर जाऊंगी, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगे। अब यहां तो पूरी क्लासेस वैसे ही, और हर सत्र में मेडिटेशन, और वातावरण भी वैसे, लेकिन जैसे ही इस एसी से आप निकले, पहुंचे वहां, फिर वहां पर गर्माहट है कलयुग की। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहे पॉजिटिव थिंकिंग के और मेडिटेशन के, तो धीरे 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 फिर कलयुग का प्रभाव हमारे अंदर। इसीलिए तो रोज कह रहे हैं ना, रोज भोजन जरूरी है। उसी प्रकार रोज पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस जरूरी है, जिससे वो ऊंचाई जो मैं जीवन में चाह रही हूं कि मैं आनंदित रहूं, मैं खुश रहूं, इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं है, तो वो जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है। एक किसी फिल्म का ही शायद डायलॉग है कि जिस चीज को हम शिद्दत के साथ चाहते हैं तो सारी कायनात उसे हासिल कराने में लग जाती है। मैंने हर 10 वर्ष के या 1 साल के कुछ ऐसे टारगेट तय किए, वो मेरे जीवन में चमत्कार की तरह थे। मैंने किसी के साथ उसको शेयर नहीं किया, लेकिन जब एक साल के बाद उसके रिजल्ट मुझे पता चले तो मैं शेयर करने लग गई कि मेडिटेशन का चमत्कार क्या होता है। मैं एक प्रैक्टिकल घटना बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में हम सभी उठते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई बहुत बड़ी सभा है और उस सभा के बीच में सकारात्मक चिंतन के ऊपर क्लास चल रही है। यह आदरणीय शिवानी दीदी जी हैं, मैं बिलासपुर में शिवानी दीदी को बुलाई हूँ। ये केवल मैं विजुलाइज करती थी, घटित नहीं हुआ था, मैं केवल विजुलाइज करती थी। तो आपने चूंकि जैसे परिचय में सुना कि मैं पूर्व में प्राचार्य के पद पर भी रही हूँ 4 वर्ष सेवा केंद्र पर ही रह के, लेकिन फिर इतना खिंचाव हुआ, इतना खिंचाव कि नहीं बेहद की सेवा में लगना है। तो छत्तीसगढ़ योग आयोग की जब प्रथम सदस्य महिला सदस्य के रूप में मनोनीत हुए तो बहुत बड़ा एक स्टेडियम, तो विगत 10 वर्षों से वहां पर आसन प्राणायाम ये सब करवा रहे थे। तो मैं देखती थी, वहां पर विजुलाइज करती थी कि 10,000 की भीड़ है पूरी और शिवानी दीदी का कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। प्रैक्टिकल घटना बता रही हूँ, अभी कुछ बातचीत भी नहीं हुई है, प्रोग्राम तय है ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सभी बहनों को कहती थी, जो भी क्लास वाले भाई बहन है, कि हम ब्रह्म मुहूर्त में ना बस विजुलाइज करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे और देखना ये घटित होगा। और 1.5 से 2 महीने के पहले मुझे हमारी बड़ी दीदी जी का फोन आया कि मंजू बहन, शिवानी बहन का 23 जुलाई को आना 2023 में तय हो गया है, तुम तैयारी शुरू कर दो। मैंने तो बातचीत भी नहीं की थी, लेकिन वो घटित हुआ। वही बात, जिस चीज को आप शिद्दत के साथ चाहते हैं तो सारी कायनात उसे हासिल कराने में लग जाती है। हाँ, ताली बजा दो। हाँ, आप भी वो विजुलाइजेशन करके देखना। तो वो कार्यक्रम ऐसा हुआ, होता ही है उनका, लेकिन सब ने कहा बिलासपुर का ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था, इसमें मैं का समर्पण था। मुझे लगता भी नहीं कि इसमें मैं कहीं पर थी, सब कुछ जैसे हो रहा है और परमात्मा करा रहा है। फिर अंदर में एक थॉट आया कि चलो प्राचार्य के पद पर रहे हैं तो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, ये नॉलेज एक्सपीरियंस के आधार पर तो आई है। तो मेरा रायपुर जाना हुआ और आदरणीय मृत्युंजय भाई जी और हमारे जो जोनल डायरेक्टर थे भ्राता ओम प्रकाश भाई जी, तो वो भी वहां थे और गवर्नमेंट की ओर से लगभग 2000 शिक्षकों का प्रोग्राम वहां पर चल रहा था। मेरा कोई लेक्चर नहीं था, कोई लेक्चर नहीं था, लेकिन जैसे मैंने एंट्री की और भ्राता जी को ओम शांति किया तो उन्होंने देखा, अरे मंजू बहन, आप ना प्रिंसिपल के पद पर रही हो, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा कि टीचर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। आज 2000 शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, आप उनकी 1 घंटा क्लास लेना। उसको मैं विजुलाइज करती थी ब्रह्म मुहूर्त में कि कभी मैं 2 से 3 हजार शिक्षकों के बीच में बैठकर शिक्षकों को मोटिवेट कर रही हूँ। ये बात मैं अहंकार से बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, लेकिन कभी कभी जो प्राप्तियां हमें होती है ना, ऐसा महसूस होता है कि वो प्राप्तियां हम दूसरों को भी कराएं। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं 3 घंटे की, वो मूवी आपको अच्छी लगती है तो आप कितने लोगों को पास ऑन करते हैं, कि वो देखे ना अमिताभ बच्चन की मूवी है उसकी, क्योंकि मुझे एक ही एक्टर याद है इसलिए और कोई एक्टर का नाम नहीं ले पाऊंगी, तो आप जरूर देखना, जरूर देखना। आपने माउथ टू माउथ सर्विस कर दी कि वो मूवी देखिएगा। उसी प्रकार ये राजयोग मेडिटेशन के चमत्कार जो मैं व्यक्तिगत रूप से 1981 से कर रही हूं, तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं माउथ टू माउथ सर्विस करूं? इसीलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे। अब वो घटना घटित हो गई रायपुर की, लेकिन मैंने फिर डायमंड हॉल को देखा। ठीक है, ये डायमंड हॉल, कि डायमंड हॉल शिक्षकों से खचाखच भरा हुआ है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में करती थी ये सब, और उसमें मैं शिक्षकों को मोटिवेट कर रही हूं। मैं अपने आप को इस रूप में देख रही थी, परमात्मा को याद करती थी। वो थॉट नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं शब्द को ले लेता है, इसलिए होगा कि नहीं, नहीं बोलना ही नहीं, होगा ही होगा, होगा यानी होगा। अब मैं शिक्षकों को लेकर के आई थी यहां पर। मॉर्निंग वॉक करते समय मृत्युंजय भाई जी मिले, मैंने उनको ओम शांति किया, पता नहीं बस नजर पड़ गई उनकी, और कोई लेक्चर मेरा नहीं था उस समय भी, प्रैक्टिकल बात बता रही हूं। और राज्यपाल आने वाले थे, शायद गुजरात के या राजस्थान के कुछ ऐसा ही था, तो मृत्युंजय भाई जी का फोन आया कि मंजू बहन आज का अनाउंसमेंट आपके हाथ में है, लेकिन राज्यपाल को आने में लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटा लेट हो जाएगा, और वो पूरे 10,000 की शिक्षकों की सभा को बांध के रखना है ताकि वो उठ करके न जाए, क्योंकि राज्यपाल 1 घंटा देरी से आएंगे। कोई मौका मिला नहीं था, लेकिन ड्रामा और विजुलाइजेशन, जिस चीज को शिद्दत के साथ चाहते हो तो सारी कायनात उसे हासिल कराने में लग जाती है। तो यहां मंच संचालन चल रहा है, डायरेक्ट भ्राता जी का फोन आया कि लगातार 1 घंटे बांध के रखना उनको, कोई भी उठना नहीं चाहिए। मैंने कहा शिव बाबा, जो चीज किसी को बोली भी नहीं जाती, बस ब्रह्म मुहूर्त में आपके साथ शेयर की जाती है, आप पहुंचा देते हो ना दूसरे तक। और पूरी सभा बैठी रही और बहुत आनंदित हुए, क्योंकि मेरे जीवन के प्रिंसिपलशिप के प्रैक्टिकल वो एक्सपीरियंस थे जिसको मैं शेयर करना चाहती थी, कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, प्रिंसिपल को कैसा होना चाहिए, क्या देना है हमें बच्चों को। तो वो अनुभव और साथ साथ अवचेतन मन की परमात्म प्यार की शक्ति, इसने वो छोटी सी बात है, लेकिन कई ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं जब हम अपने जीवन को बिल्कुल संभाल नहीं पाते। कभी कभी हम किसी को बहुत प्यार करते हैं। फर्स्ट डे भी ये बात मैंने कही थी कि जो संबंध होते हैं आजकल, देखिए कई बार मैरिज के पहले ही किसी के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, ऐसा लगता है इसी के साथ किसी की मैरिज होगी ही होगी और वो उसमें आनंदित होता है, लेकिन एक पक्ष धोखा दे देता है और वो उससे दूर चला जाता है, संभाल नहीं पाते हैं। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, सुसाइड करने का सोचते हैं। एक बार एक नेहरू युवा केंद्र में प्रोग्राम था, 1 घंटे का प्रोग्राम हुआ और बहुत वर्ष हो गए थे उस बात को लेकर, लेकिन एक युवा 5 साल बाद मेडिटेशन सेंटर ढूंढते ढूंढते आया और उसने मेरे साथ वो बात शेयर की कि दीदी आज मैं सुसाइड करने वाला था। करने वाला था क्या, मैं करने वाला हूं, लेकिन पता नहीं जब मैं जा रहा था कि मैं ट्रेन के नीचे आकर के कटूंगा, मतलब मैं कहां से कट सकता है, केवल शरीर का ही अंग कटेगा। आज बिल्कुल दृढ़ संकल्प था, लेकिन अचानक जैसे मुझे आपने जो 5 साल पहले स्पीच दिया था, आपका चेहरा आया सामने और मुझे लगा कि नहीं, मैं दीदी से मिलने चलता हूं। और वो युवा आया, 2-3 घंटे बैठे उसके साथ, बहुत रोते 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 अपने दिल की बातें शेयर की उसने। मैं नहीं जानता कि क्यों आपका चेहरा सामने आया, लेकिन शायद कुछ घटित होने वाला होगा, इसीलिए मैं आया यहां पर। तो ज्ञान की चर्चा हुई, ध्यान थोड़े देर कराया, माता पिता के साथ भी उसका व्यवहार कहूं या उनका व्यवहार कहूं, क्योंकि माता पिता के भी संबंध ठीक नहीं थे, वो भी कहीं और रिलेशन में अटके हुए हैं। उस बच्चे ने भी किसी से प्यार किया, उसको भी वहां पर धोखा मिला, तो अंदर से वो बहुत टूट गया था। तो मैं एक गीत की लाइन सबको सुनाती थी कि जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं, कोई भी तेरा हो सकता था, कभी तूने अपनाया ही नहीं। तो हम सोचते ना, बस ये मेरे जीवन में ये नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया मेरे जीवन का। वहीं पर ध्यान के और सकारात्मकता के चमत्कार नजर आते हैं कि अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना है और उसमें पॉजिटिव थिंकिंग को, मेडिटेशन को स्थान देना है, तब हमारे जीवन में कोई घटना घटित होगी। बचपन में हम लोग सुनते थे ना कि क्या प्यास लगेगी तभी कुआं खोदोगे क्या, ऐसा सुनते थे। तो क्या परिस्थिति आएगी तभी मेडिटेशन करोगे क्या, तभी पॉजिटिव थिंकिंग के क्लास करोगे क्या? क्योंकि कई बार हमने देखा कि इतना मन दर्द में होता है कि उनको कुछ अच्छी बातें बताई भी जाती ना, समझ में नहीं आते, तो मैं तो रोने देती हूं, पहले 7 दिन तक रोने देती हूं, रोलो रोलो, उसके बाद लगता है नहीं ये अपने से नजर आ रहे हैं। अब सुनते हैं मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में, पॉजिटिव थॉट सुनते हैं इनसे, तब धीरे 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 वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, आप में से कई होंगे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कई हैं जिन्होंने कई परिस्थितियों का सामना किया होगा, उनको भी लाभ मिलेगा, और जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, आगे आए भी नहीं, मैं ही आपको दिल से दुआ दूंगी, लेकिन अगर आती भी है वो प्रॉब्लम, तो उस परिस्थिति को हम बहुत प्यार से हैंडल कर सके, फेस कर सके, ये मेडिटेशन का चमत्कार है। तो सबसे पहली पावर यही आ जाती है, सहनशीलता। सहन तो करें लेकिन शीतलता के साथ। कहेंगे नहीं दीदी, आप लोगों के लिए सरल हो सकता है क्योंकि आप लोग सब छोड़ के आए हैं ना, आप लोग का है क्या, हम लोग को बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ, यहाँ भी बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी, सबके साथ प्यार से हैंडल करना पड़ता है। अब देखिए, 2 दिन से भी बहुत सुंदर आप कल्चरल प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, एंड टाइम पर मान लीजिए 3 से 4 लोग आते हैं कि दीदी 3 मिनट 4 मिनट मैं भी गीत गाऊंगी, मैं भी गीत गाऊंगा। प्रोग्राम 1.5-2 महीने से सेट होता है, उसकी तैयारी चलती रहती है, मुझे ना करना भी अच्छा नहीं लगता, ना करना भी अच्छा नहीं लगता, उनके चेहरे को देखती हूँ। कभी कभी कोई उन्हें कह देता है कि आपका गीत जरूर करवाएंगे, आपका डांस जरूर करवाएंगे, लेकिन जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनसे भी तो वो सारी बातें डेढ़ दो महीने से चल रही है ना। अचानक चार पांच प्रोग्राम कर दें, कितना बच जाएगा? प्रैक्टिकल बात है, 11 बचेगा। हमारे लिए तो सहज हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ साउंड सिस्टम संभाल रहे हैं, जो स्टेज संभाल रहे हैं, उनको मॉर्निंग में 3:30-4 बजे फिर से मेडिटेशन के लिए पूरी तैयारी करके रखना है। तो इसीलिए कहा, प्यार से डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। पहले ये मैं कर नहीं पाती थी, मुझे लगता था अरे इनका चेहरा उतर गया, इनको खुशी दे दो, लेकिन उस बात को लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़े और आपकी शक्ति ही नष्ट हो जाए, तो आप खुश रहकर दूसरों को जो खुशी बांटने का सोच रहे थे, खुद ही दुखी हो गई हूं अब, तो कैसे खुशी बांटूंगे? तो शीतलता जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी है। उदाहरण देते हैं कि आम के वृक्ष को कोई पत्थर मारता है, उल्टे में तो पत्थर नहीं मारता ना, मीठे मीठे फल देता है। तो कोई अच्छे मार्ग पर भी चलेगा तो उसको कहने वाले लोग बहुत रहेंगे, लेकिन एक बात अंदर में पक्का कर लो कि आपके जीवन की नैतिकता, मूल्य, आपकी खुशी बनी रहे। इस संसार में 95% लोग आपके अच्छे कर्मों के कारण आपको प्यार करते हैं, तो 5% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी सदा ही अच्छे कर्मों के कारण टांग खींचते रहेंगे। तो क्या आप अच्छे कर्म करना बंद कर देंगे, मीठा बोलना बंद कर देंगे, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखना बंद कर देंगे कि ये 5% मेरी टांग खींचते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता? एक बात अंदर चली गई गहराई से कि कभी कभी महसूस होता है कि सामने वाला मुझसे ईर्ष्या करता है, तो वो ईर्ष्या करता है ना मेरे इस कर्म से, तो मैं ये कर्म छोड़ देती हूँ। तो मैंने अपनी एक सीनियर दीदी से ये प्रश्न किया था। तो जो भाग्य मैं आत्मा अपने कर्मों से तैयार की हूँ, तो दीदी ने कहा था कि मेरे भाग्य को छीनने की ताकत स्वयं परमात्मा में भी नहीं है, तो मनुष्य की क्या औकात है, मनुष्य की क्या औकात है। उस दिन से वो पॉइंट मेरे अंदर चली गई, गहराई में चली गई। रुकना नहीं है, है ना, रुकना नहीं है, चलते चलो। लेकिन जो टांग खींच भी रहे हैं उनके प्रति भी दुर्भावना नहीं रखनी है, क्योंकि वो अंदर से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है वो 100 के सामने आपकी क्रिटिसाइज करें, 1000 के सामने आपकी क्रिटिसाइज करें, लेकिन अंदर चला गया, जब उस 1000 उन 1000 व्यक्तियों को पता चलेगा कि नहीं ये तो ऐसे नहीं थे, मंजू दीदी तो ऐसी नहीं थी, ये तो ऐसे नहीं थे, तब तक आप 1000 के सामने फेमस हो चुके होंगे। ये बात अंदर चले गए, लेकिन उनको हमारी पॉजिटिविटी सामने आ जाएगी कि जो बात इन 5 लोगों ने हमारे अंदर डाली थी, ये तो ऐसे है ही नहीं। फेमस होना मना। जब मैं अपने जीवन को पीछे पलट करके देखूं, तो मैं खुश हो सकूं कि मैंने जीवन में किसी के साथ भी गलत नहीं किया। तो जो आपके प्रति दुर्भावना रखता है, ईर्ष्या रखता है, घृणा रखता है, उसके प्रति भी मेरी फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, है ना? जैसे एक उदाहरण आता है, कई लोग रहते हैं ना जीवन में वही टांग खींचने वाले, धक्का देने वाले, तो एक बार एक व्यक्ति ने अनाउंसमेंट किया कि मेरे पास अरबों की संपत्ति है, मेरी एक सुंदर कन्या भी है, और एक शर्त रखी कि बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, उस स्विमिंग पूल में से जो सबसे पहले इस पार से इस पार आ जाएगा मैं उसको अरबों की संपत्ति दे दूंगा और अपनी सुंदर कन्या का विवाह उसके साथ करवा दूंगा। तो कई पुरुष आए, सुंदर कन्या का भी सवाल था, अरबों की संपत्ति का सवाल था, लेकिन जब स्विमिंग पूल में झांक करके देखा तो बहुत विषैले सर्प थे, सांप, किसी को भी कूदने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति कूदा और वो इस पार से उस पार आ गया। लोगों ने बहुत तालियां बजाई और उस करोड़ों की संपत्ति के मालिक व्यक्ति ने कहा कि मेरी पूरी संपत्ति तुम्हारी और मेरी सुंदर कन्या भी तुम्हारी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो अरबों की संपत्ति भी अपने पास रहने दो और सुंदर कन्या भी अपने पास रहने दो, पहले तो मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जिसने मुझे पीछे से धक्का दिया था, है ना? तो कई बार धक्का देने के कारण भी हम आगे बढ़ते हैं, बस उस समय अपनी विल पावर को कमजोर होने नहीं देना कि उन्होंने ऐसे किया। आप उस समय समझ लीजिए मेरा आगे बढ़ने का समय आ गया है, आगे बढ़ने का समय आ गया है, टांग खींची गई है, धक्का दिया गया है। मैं रोज उनको दिल से शुक्रिया अदा करती हूं जो कर्म मैंने नहीं किया लेकिन उसके बारे में भी किसी ने मेरी बात बड़ों तक पहुंचाई या कुछ कहा मेरे बारे में, शुक्रिया आपका, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जो मुझे क्रिटिसाइज करके भी सम्मान दे रहे हैं। ये चमत्कार है राजयोग मेडिटेशन का। तो सहनशीलता भी बढ़ती है और एडजस्ट करने की पावर भी बढ़ती है, पावर टू एडजस्ट। जैसे देखिए समुद्र होता है ना, सब कूड़ा करकट अपने अंदर समा लेता है या किनारे कर देता है। आज हम लोगों की बहुत आदत हो गई है कि किसी के बारे में कुछ सुना भी, सत्य भी होगा वो, किसी अन्य घर की बच्ची या बच्चा कोई मर्यादा के विपरीत कर्म करता है, हम बहुतों को सुनाते हैं उसके बारे में कि वो है ना ऐसी है, कैरेक्टरलेस है, फैला दिया। आज हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, सबसे बड़ा प्रदूषण है मानसिक प्रदूषण और हम इसको फैला रहे हैं, बहुत फैला रहे हैं। तो वातावरण में हम क्या दे रहे हैं? एक बात याद रख लीजिए, इस संसार को यदि बदला है तो केवल 1% वर्ग ने ही बदला है, 99% की आवश्यकता नहीं है, वो 1% आप हैं। अब आप अपने लिए ताली बजाओ, वो 1% आप हैं। तो दूसरे की कन्या, उसने कुछ गलती की, अगर मेरी बच्ची कोई गलती की है उसके बारे में कोई कुछ बोलता है, कितनी तकलीफ होती है हमें, कितनी तकलीफ होती है। तो उसको भी अपना समझकर किसी की क्रिटिसाइज न करें। कोई बात सत्य भी होगी तो समुद्र की भांति या एक माँ की भांति अपने जीवन में उसको समा लीजिए, उसको फैलाइए मत। ये भी पावर हमें ध्यान के माध्यम से अनुभव में आते हैं, समुद्र की तरह विशाल दिल वाले बन जाते हैं। कभी कभी कुछ गड़बड़ी भी होती है ना, तो लगता है नहीं, जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी हमारे भाई हैं तो सब हमारे ही। जब हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं तो क्या हम 5 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य आपस में शुभ भावनाओं के साथ नहीं रह सकते? तीसरा मेरा कल जादू चमत्कार जो हमारे जीवन में होता है, मैं शक्तियों की प्राप्तियों की बात बता रही हूं, परखने की शक्ति आती है, निर्णय शक्ति आती है। आज कई बार आप में से कईयों ने जीवन में कहा होगा कि काश हम उनको परख लेते ना कि वो व्यक्ति वैसा है, तो हम उसके साथ कभी फ्रेंडशिप नहीं करते, बहुत नुकसान पहुंचाया उन्होंने मेरा मीठी मीठी बातें करके। किसके किसके जीवन में ऐसा घटित हुआ? हाथ उठाइए लंबा कि परख नहीं पाए किसी को जीवन में, बहुत से लोग होंगे। और जब परख नहीं पाते, धोखा मिलता है, तो अंदर से हम टूट जाते हैं। और टूटा हुआ व्यक्ति दूसरे को कैसे खड़ा कर सकता है? तो मेडिटेशन का ये चमत्कार है कि परखने की शक्ति भी आती है। जैसे एक पारखी हीरे को देख के बता सकता है ना असली है या नकली है, तो ये शक्ति डेवलप होगी कि नहीं, प्यार से रहेंगे उसके साथ। किसी की बातों पर भी विश्वास मत कीजिए कि वो व्यक्ति ऐसा है, हो सकता है वो व्यक्ति उससे चिढ़ता हो इसीलिए आपके सामने ऐसी बात कह रहा है, लेकिन चारों ओर आपके एक सुरक्षा कवच होना चाहिए जो आप टूट न जाए। वो एक गीत है ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, तो कहीं हम अंदर से टूट न जाए तो परखें। तो कहेंगे दीदी कैसे परखें? कहा ना, कॉन्सेंट्रेशन पावर जब डेवलप होती है तो हमारे अंदर एक टचिंग भी आती है कि देखो इस व्यक्ति के साथ प्यार से रहना, आंतरिक प्यार भी रखना, रूहानी स्नेह रखना, लेकिन अपने आप को एक सुरक्षा कवच में रखना, अपना ओरा हमें पावरफुल रखना है, तब वो ओरा दूसरों को प्रभावित करेगा, आप दूसरे को भी कुछ दे पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल गहराई से अपने अंदर बिठा लें कि परख करके फिर निर्णय ले। कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों से पूछते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनसे कहेंगे बताओ ना मैं ये बिजनेस करूं कि ये बिजनेस करूं, मुझसे भी आके पूछते हैं कई बार कि दीदी ये 5 लड़के अभी आए हैं, अपनी बेटी की शादी किसके साथ करें आप बताइए ना। मैं कहती हूँ ये मेरा काम नहीं है, है ना। मुझे गीता की बात याद आ जाती है कि युद्ध भी तुम्हारा है अर्जुन, और ये युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा है, युद्ध तुम्हें ही करना है, युद्ध तुम्हें ही करना है। तो जब ये लाइन कहती हूँ ना, ये युद्ध भी तुम्हारा है अर्जुन, ये युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा है, आप डिसीजन लीजिए। मान लीजिए मैंने डिसीजन दे दिया आपको और आपको लगता है अरे शादी हो गई, वो लड़का ठीक था, वो लड़का, हम तो दीदी की बात में आके इससे शादी कर लिए, तो पूरी जिंदगी भर दोष किसको देते रहेंगे? मुझे। तो हम लोग ये वाला काम नहीं करते। यहाँ सबसे बड़ा चमत्कार है कि आप अपनी विल पावर को क्रिएट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ कोई दीदियों के पांव भी नहीं छूते हैं, है ना। अब किसी की भावना रहती ना तो वो आके छूते हैं, कहते दीदी आशीर्वाद दे दीजिए ना, तो ठीक है भाई हाथ रख देते हैं, एक वाइब्रेशन दे देते हैं। लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि चमत्कार आप खुद अपने जीवन में अनुभव करोगे कि निर्णय शक्ति हमारे अंदर की बढ़ गई है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप आए हैं, किसको किसको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर आएंगे ना तो हम अपने साथ 10-15 को और लेकर के आएंगे? किसको किसको ऐसा महसूस हो रहा है जो पहली बार आए? लग रहा होगा। अब आप निर्णय उसका लेंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं नेक्स्ट ईयर। उनको भरोसा है कि वो एक साल पूरा जीवित रहेंगे। मैं तो रोज ये पॉइंट कह देती हूँ। कल ही मुझे फोन आया बिलासपुर से कि दीदी कब पहुंच रहे हैं, बहुत पक्का हो रहा है ये पाठ। तो मैं बहुत प्यार से कहती हूँ कि वैसे तो ये डेट है पहुंचने की बिलासपुर, लेकिन हमारी जो मम्मा थी ना, फोटो मम्मा का लगा हुआ है, उनका एक थॉट था, हर घड़ी अंतिम घड़ी, और हुक्म ही हुक्म चलाया रहा, तो वो याद रहता है। मैंने कहा इस शरीर में आत्मा रहेगी ना, तो मैं इस तारीख को पहुंच जाऊंगी। कहा दीदी ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं रहूंगी इस शरीर में, लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रही हूं क्योंकि परमात्मा हमें मुरली में ये पाठ पक्का कराते, मुरली में ना पॉजिटिव थॉट में, जो भी डायमंड हॉल में चल रही है ना पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास, वो करना आप लोग आगे एडवांस कोर्स में, तो बहुत मजा आएगा आपको। तो हर समय ये याद रखें। तो मैंने मान लीजिए किसी के ऊपर क्रोध कर भी लिया, तो फिर एक मिनट नहीं ना, सॉरी थोड़ा निकल गया, गले लगा लो उसको बहुत प्यार से। ये हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमारे संबंध हमेशा मधुर बने रहें। नेक्स्ट पावर हमारे अंदर आती है, पावर टू फेस, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया कि जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। मैंने फर्स्ट डे भी कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि हमारे जीवन के दो संबंध, माता पिता, जो हमारे मोह वाले रिलेशन होते हैं, ठीक है, आप लोगों के जीवन में घर गृहस्थ में पति पत्नी बच्चे बहुत बड़ा फिर लौकिक रिलेशन होता है, तो बहुत कठिन होता है कई बार जीवन में उस परिस्थिति का सामना करना। लेकिन कहते हैं जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। तो कई ऐसे जीवन के अनुभव युवाओं के भी हैं और व्यक्तिगत मेरे हैं कि किस प्रकार हम ध्यान के माध्यम से उस परिस्थिति को फेस कर लेते हैं। एक बच्ची के जीवन में, मतलब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगी, कि बहुत अटैचमेंट था किसी से, बहुत ज्यादा ही, यहां तक बिल्कुल सब कुछ फिक्स, लेकिन जब संबंध में धोखा मिला और उसने फिर मेडिटेशन कोर्स किया, रेगुलर क्लास के, आज आपको बता देती हूँ, वो बहुत सुंदर तरीके से अपना ब्रह्मा कुमारी जीवन व्यतीत कर रही है। नाम किसी का नहीं लेना चाहती, और उसके चेहरे में एक तेज है, ओज है, और वो युवा बहन दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा दे रही है। कि ये नहीं कहा जा रहा है कि आप प्यार नहीं करो, प्यार तो होना चाहिए, हम प्यार के सागर परमात्मा की संतान है, लेकिन परखने की शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, और धोखा मिला तो अपने आप को संभाल सके। तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर युवाओं को प्रेरणा देती है कि नहीं कोई बात नहीं, आप रेगुलर आते रहो, मन नहीं भी लगेगा तो धीरे 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 स्टेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट मिराकल हमारे जीवन में जो होता है वो है पावर टू कॉपरेट, सहयोग शक्ति। हमेशा अच्छे कार्यों में सहयोगी बने, गलत कार्यों में तो बन जाते हैं। मैं देख रही थी, देखो कल्चरल प्रोग्राम होता है ना दो दिन, हाँ, पूरा हॉल भरा रहता है, पूरा हॉल। इसीलिए उस कल्चरल प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट दे, क्योंकि हमें मालूम है मॉर्निंग के 7 से 8 के सत्र में बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम लोग, तो कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से कोई प्रेरणा दी जाए। तो सहयोग शक्ति, अच्छे कार्यों में सहयोग, सहयोगी बने। बूंद बूंद से घड़ा भरता है कहते हैं ना, कई लोग पूछते दीदी कैसे चलता है यहाँ का कार्य, है ना, इतने प्यार से देखो हमारे सब भाई लोग सेवा करते हैं, बहनें सेवा करती। कई लोग पूछते दीदी इन लोगों को सैलरी मिलती है क्या कुछ, आप लोग को तो बहुत सैलरी मिलती होगी ना? हम कहते नहीं, हम लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलती, सबसे बड़ी सैलरी है खुशी, आनंद, प्रेम, निस्वार्थ भाव से करते हैं, किसी को कोई पेमेंट नहीं है यहाँ पर। एक बार कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर आए थे, तो देखा कि यहाँ का इतना स्मूथ मैनेजमेंट कैसे चलता है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमारी दादी प्रकाशमणि जी से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, फिर भी हमारा मैनेजमेंट ऐसा नहीं चल पाता, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं चल पाता, आपका कैसे चलता है यहाँ पर, टाइम से भोजन, टाइम से सब कुछ। तो दादी जी ने एक ही बात कही थी कि स्पिरिचुअल पावर इज द सीक्रेट ऑफ ऑल मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने पहले किसको अपनाया हुआ है, आध्यात्मिकता को। कई पूछते हैं फॉरेन से बहुत पैसा आता होगा ना आप लोगों को, क्या क्या पूछते हैं मैं बता नहीं सकती, लेकिन यहाँ जो हमारे भाई, अब देखिए भाई बैठे हुए हैं, साउंड सिस्टम ही इनकी सेवा है, हर कार्यक्रम में है, हर कार्यक्रम में, लेकिन बिना पेमेंट के सेवा कर रहे हैं। आज वही दुनिया में एक घंटा कोई साउंड सिस्टम में रहे ना, उसको कितनी सैलरी देनी पड़ती है। हम मेले में, हमारा कुंभ मेला चलता है, उज्जैन में था, हम कईयों का इंटरव्यू ले रहे थे, तो मुझे एक संत ने ही कहा कि आप इंटरव्यू लेती थी क्या पहले, फिर ब्रह्मा कुमारी इसमें आई। मैंने कहा नहीं, बस परमात्मा ने सब कुछ सिखा दिया। बोले आप बाहर इंटरव्यू लेंगी ना तो आप लाखों से खेलेंगी, एक बात बोली उन्होंने, आपको 1,00,000 से अधिक सैलरी रहेगी, इतनी सैलरी रहेगी आपकी। मैंने बहुत प्यार से गुरु जी को कहा कि नहीं, हम ये सब के लिए कर ही नहीं रहे, हम इस सोच के साथ परमात्मा की जी रहे हैं कि सब कुछ है मेरा, कुछ नहीं है मेरा, सब है मेरे, कोई नहीं है मेरा, है ना। ये सोच सहयोग शक्ति को विकसित कर रही है। तो इतनी तन की मन की यहाँ पर समर्पणता है, जो अगर एक एक भाई की और बहन की सैलरी निकाली जाए तो करोड़ों में पहुंच जाए, लेकिन तन और मन की समर्पणता है, इस आधार पर इतना बड़ा कार्य चल रहा है। धन आवश्यक है लेकिन धन सब कुछ नहीं है, धन सब कुछ नहीं है। और हाँ, जो भाई बहन यहाँ से जुड़ते गए, उन्होंने सुदामा के मिसल अपनी चावल मुट्ठी लगाई है और उसके आधार पर ये कार्य चल रहा है। हम कभी भी किसी से बाहर चंदा मांगने नहीं जाते, कोई ऐसे रसीद काट करके नहीं देते कि बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो जाए, लेकिन जो ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़ा हुआ है वही अपनी तन मन धन की शक्ति को लगा रहा है। अगर एक पिता के 4 बच्चे हों और 4 बच्चे बहुत आज्ञाकारी, वफादार, मात पिता को प्यार करने वाले हों, तो उस मात पिता को कभी कोई तकलीफ हो सकती? तो इतने बच्चे, आज ब्रह्मा कुमारी परिवार है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और ये परिवार मिलकर के चला रहा है। तो ये है सहयोग शक्ति। तो कहते एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि इस शहर में कितने ईमानदार रहते हैं, तो बीरबल ने कहा एक भी नहीं रहता, सुना होगा वो दृष्टांत। तो कहा सिद्ध करके बताओ। तो एक कुआं बनाया गया और पूरे शहर वासियों से कहा गया कि सभी रात के समय में इसमें एक एक लोटा दूध डालेंगे, है ना। तो सबने सोचा सभी एक एक लोटा दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूंगा तो क्या होगा। तो सुबह उठ करके देखा गया तो पूरा कुआं पानी से भरा था, दूध किसी ने नहीं डाला। यहाँ सब सोचते हैं हम सब दूध डालेंगे, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, संबंधों की शक्ति लगाएंगे। इसीलिए आज पूरे विश्व के 140 देशों में हमारे 9,000 से भी अधिक छोटे बड़े सेवा केंद्र हो गए हैं, और 90 वर्ष से ये कई क्रिटिसाइज को फेस करते हुए भी, चूंकि शिव बाबा का कार्य है इसलिए निरंतर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो वो गीत सुना था ना, मैं रहूं या न रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं परमात्मा का कार्य निरंतर चलता ही रहेगा, क्योंकि ये परमात्मा का कार्य है और परमात्मा ही भारत को जगत गुरु का स्थान दिलवाते हैं, है ही वो जगत गुरु। नेक्स्ट मिराकल कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। जहां आपको लगता है ना कि ज्यादा आप अपनी शक्तियों को, बोल को व्यर्थ नहीं, कछुए की भांति समेट ले अपने आप को। और फिर एक मिराकल हमारे जीवन में आता है, पावर टू पैकअप। सफर में जाएंगे, कहते हैं सफर में होती है शिकायत, इसलिए रेलवे में भी रिजर्वेशन होती है। परंतु कुछ तो करो इस सफर के लिए, जिसमें ना कोई टिकट और ना ही कोई रिजर्वेशन होती है। तो पहले के समय में अटैची और बेडिंग लेकर के जाते थे ना। अटैची कहाँ रखते आप, पैर के नीचे, और बार बार ऐसे पैर करके देखेंगे अटैची है ना, जाते ही थोड़े है ना। और बेडिंग कहीं भी रखा जा सकता है, एसी में तो आजकल सब कुछ मिल जाता है। तो चोरों की नजर होती है किस पर, अटैची पर। तो ऐसे ही हमारी नैतिकता पर भी चोरों की नजर होती है, लेकिन उस गहने को हमें संभाल करके रखना है। और 5 दिन के बाद जब यहां से घर लौटेंगे ना, तब भी इसको कोई चोर चोरी ना कर ले, प्रेम को, प्रेम धन है ना, आनंद धन है ना, इसका जरूर ख्याल रखें। तो ये मेरा कल्स, ये जादू, ये चमत्कार हमारे जीवन में मेडिटेशन के माध्यम से आता है। चलिए लास्ट में 2 मिनट मेडिटेशन। आप सभी बैठे रहिएगा, शायद कोई एक भाई 2 मिनट अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओम शांति। मन की शांत स्थिति है। आज मैंने ध्यान के चमत्कार, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर सुने, लेकिन है वो परमात्मा की शक्ति, जिस शक्ति के आधार पर निरंतर मेरी आत्मिक शक्ति जागृत होती है, मेरे भीतर सहनशीलता बढ़ती चली जाती है। परमात्मा शिव बाबा, मैं आपको जान चुकी हूं, पहचान चुकी हूं कि आप ही विश्व के नियंता हो, विश्व के पालनहार हो। आज मेरा अंतर मन आपको दिल की गहराइयों से पुकार रहा है। इस भाव के साथ जरा सामने तो आओ, चलिए चुप चुप चलने में क्या राज है, यूं चुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ, चलिए हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता, हमें डरने की जग में क्या बात है। जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है। प्रेम की है ये आग सजन, जो इधर लगे और उधर उठे, ए, प्रेम का है तार पिया जो इधर सजे और उधर बजे, तेरी प्रीत पे बड़ा हमें नाज है। मेरे सर का तू ही रे सरताज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, परमात्मा हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हमसे हमारी शक्ति को छीन नहीं सकती। विश्व का नियंता मेरे साथ है। शांति शांति शांति, ओम शांति ओम शांति ओम शांति
ओम शांति। दीदी का फिर से करतल ध्वनि से अच्छे से दीदी का धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। अभी हम अनुभव सुनेंगे।
धन्यवाद। ओम शांति। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए सभी सम्मानित पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सर्वप्रथम तो धन्यवाद और शुक्रिया इस प्रोग्राम इस कार्यक्रम के आयोजकों का। शांति एकता विश्वास ये सब्जेक्ट ये विषय मैं तो समझता था कि पत्रकारों को क्या जरूरत होगी अध्यात्म की, लेकिन यहाँ आके ये अनुभव हुआ कि पत्रकारों को सबसे ज्यादा जरूरत है अध्यात्म की। शुक्रिया मेरी दाई जानी बैठी दीदी का। क्या रूह को पाकीज़गी बख्शती है, क्या ताजगी है, क्या सुगंध है। एक सुगंध लेकर जाऊंगा। और धन्यवाद प्रियांशी दीदी का जो शुक्रताल की हैं, उनके नेतृत्व में हम यहाँ आए। बारंबार धन्यवाद। एक मैसेज यहाँ से मिला, ताला कुछ चाबी कुछ। ताले में चाबी कुछ थी नहीं खुल रहा था। एक एंग्जाइटी एक क्रोध एक गुस्सा। जब आप प्रयास करते हैं और नाकाम होते हैं तो निराशा बढ़ती है। सबसे अच्छा अनुभव जब होता है जब मैं यहाँ से जाऊं और अपने कमरे के ताले को खोलूं, एकदम एक झटके में खुल जाए। और वो ना खुले तो कितनी तकलीफ होगी। तकलीफ होगी तो गुस्सा आएगा और गुस्से के परिणाम क्या होंगे। लेकिन यहाँ से तो एक चाबी मिली और ऐसी मास्टर की, मुझे लगता है सारे ही ताले खुल जाएंगे। मैं बारंबार धन्यवाद दूंगा प्रियांशी दीदी को। और एक दो लाइनों में बस अपना अनुभव छोटा सा अनुभव शेयर करूंगा। गालिब एक कवि हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए कवि हैं। उनकी एक दो लाइन है, दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ, मन्नत कश एहसान उठाना, मेरे दर्द ने किसी दवा का एहसान नहीं लिया। तो मैं अच्छा तो हुआ नहीं दैहिक रूप से फिजिकली रूप से, पर मैंने किसी दवा का एहसान नहीं लिया, इसलिए मेरी आत्मा मेरी रूह कर्जमंद नहीं हुई। रूह अगर कर्जमंद हो गई तो मेरे दैहिक रूप से अगर मैं ठीक भी हो गया तब भी बीमार ही रहूंगा। तो दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ, मेरे दर्द ने किसी दवा का एहसान नहीं लिया, मैं ना अच्छा हुआ पर बुरा ना हुआ। फिजिकली रूप से तो मैं दो चार दिन में ठीक हो ही जाऊंगा, लेकिन अगर आत्मा कर्जमंद हो गई तो मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। वो ट्रीटमेंट यहां मिला कि दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। मुझे मेरे से लोग अपेक्षा रखे, मैं किसी से कोई अपेक्षा ना रखूं। ये मैसेज ये संदेश मैं यहां से लेकर गया। बारंबार धन्यवाद ऐसे आयोजकों का और बारंबार धन्यवाद उन लोगों का जिनके माध्यम से यहां पहुंचा। धन्यवाद। ओम शांति।